मुंह के लिए, और उन्हें ठग करके पैसा ले आकर के अपने उदरस्त कर गए, अपने कुटुंब का भरण पोषण और करने में लगा दिया, गुरु वैष्णव को नहीं दिया, तो क्या होगा? उसी पाप से, अपराध से सदा के लिए नरक भोगना, भक्ति से दूर होना हो जाएगा। इस बात विषय को याद रखो, इसमें बीस रहता है। बहुत से लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उनको भक्ति नहीं होती। दस जन्मों लाख जन्मों में भक्ति नहीं होगी, और क्या ऐसा जो उनको डर ही नहीं लगता है? वैष्णव से झूठ बोलते हुए, वैष्णव को, गुरु को ठगते हुए, दूसरों को ठगते हुए, जैसे देखो यदि तुम हमको 4 लाख रुपया दिया, ये जो मंदिर हम कर रहे हैं इसके द्वारा हम तुमको गोलोक वृंदावन में जाने का परमिट और क्या पासपोर्ट एंड वीजा हम तुमको दे देते हैं, और सचमुच में छपवा करके लिख करके कार्ड दे देते हैं। इससे जगत में कौन चीटिंग बाज, बदमाश, धोखाबाज कौन होगा? उन लोगों को भी लाख जन्म में नहीं होगी, और वो जो ठग रहे हैं उनको भी नहीं होगी। इसलिए ऐसा किसी को मत ठगो, झूठ मत बोलो। वो झूठ बोल करके किसी से कुछ पैसा लाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा के लिए भगवान यदि कुछ इच्छा होगी अपने आप सारी व्यवस्था कर देगा, ये विश्वास रखो। किसी से भी झूठ बोल करके, बेईमानी करके कोई भी चीज लेकर के अपना कुटुंब भरण पोषण करेंगे, ये मत करो। वैष्णव की सेवा करेंगे, हम ले जा रहे हैं इसे वैष्णव की सेवा करेंगे, उसे वैष्णव सेवा नहीं होती, भगवान लगने ही नहीं देंगे। और यदि कोई वैसा साधु यदि ले रहा है तो उसको भी समझो कि साधु नहीं, कोई भी शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कहेगा। वो विशेष बात है, वो विशेष बात है, किसी को ठगने की नहीं अपना है। आजकल बेईमान गवर्नमेंट हो गई है, तो बेईमानी से हम यदि धर्म करते हैं तो ये कोई हर्ज नहीं है। बेईमानी को बेईमानी करना माने क्या? धर्म। माइनस माइनस क्या हुआ होता है? प्लस हुआ। इस तरह से गरीब व्यक्ति भी संचय करेगा, उपार्जन करेगा, जितना जरूरत है उनको अधिकार दिए जाने पर भी, उपार्जन का अधिकार होने पर भी प्रयोजन से अधिक अर्थ संचय करना करने पर उसके भक्ति साधन में अकृष्ण कृपालाभ में व्याघात होता है, अधिक वो भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अधिक संचय भी अत्याहार है, अधिक उपार्जन करना भी अत्याहार है, उपार्जन भी, क्यों? उसमें तरह तरह की बातें आती हैं, उलझन आती है, झगड़े झंझट इत्यादि होते हैं। गृह त्यागी साधक संचय मात्र पर गई, गृह त्यागी को ले तो ऐसा प्रतिदिन जो भिक्षा लाभ कर गए ताहते तुष्ट ना हो गया, तहार अत्याहार दोष है, जो कुछ मिल जाता है उसे संतुष्ट होकर के। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर में और श्रील प्रभुपाद में थोड़ा सा वैशिष्ट है परस्पर। वहां तक तो ऐसा था भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद ने देखा कि आज का समाज इतना विकृत हो रहा है, इस समाज में रह करके भजन करना बड़ा भारी कठिन है, इसमें बच्चे रह करके शिक्षा नहीं पा सकते, कोई भी लोग नहीं पा सकता है, इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे इन लोगों को भी भक्ति का सुयोग मिले। इसलिए अनाधिकारी व्यक्तियों को भी मठ में लाकर, अयोग्य व्यक्तियों को भी मठ में लाया और उनको उचित शिक्षा देने के लिए ये मठ सिस्टम कायम किया। इसके पहले हमारे संप्रदाय ने ये नहीं की थी, और इसका ये हुआ धीरे धीरे जो सब क्रमशः शुद्ध भक्त रहे नहीं, सब या सबके देखी ये हो गए थे, और धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का विचार भी लुप्त हो चुका था। केवल वैष्णव लोग कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर के पहले मरने के बाद में कीर्तन करते हुए मुर्दा को ले जाते और किसी का कोई काम कराने के लिए उनको निमंत्रण करता था, उनको पैसे, जैसे हम लोग कभी 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 बुला करके ले जाते। हम लोग कुछ सुविधावादी हैं इसलिए कि हम लोगों को इसके द्वारा उन लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं प्रभुपाद के पद से, उसलिए नहीं। यदि भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद नहीं आते तो वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान नहीं। इसलिए मठ सिस्टम किया और इसको प्रचार करने की चेष्टा की, किंतु इसमें भी कुछ बुराइयां हैं। हम लोग फिर उन बुराइयों में कुछ आने लग गए। प्रभुपाद ने तो शुद्ध रूप में किया, किंतु उनमें धीरे धीरे जो युक्त वैराग्य, युक्त आहार, वैराग्य इत्यादि, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस प्रयोग होने लगा। इसे खूब शुद्ध वैष्णव लोग इनके विचारों को जान करके इन चीजों का व्यवहार करते हुए भजन करते हैं। अतः गृही और त्यागी साधक वैष्णव ऐसा विचार करके अत्याहार प्रत्याग करके कृष्ण भजन करके कृष्ण कृपा लाभ करें, इन चीजों को समझना चाहिए। कल से हम अभी तक तो हमने इसके संबंध में बतला, बीच बीच में बतलाते चलेंगे, अब इसके बाद में प्रयास और सब चीजें बतलाएंगे बीच बीच, किंतु कल से हम श्रीमद् भागवत का वो अक्रूर जी ब्रज में आएंगे। ब्रजवासियों की क्या स्थिति है और अक्रूर कृष्ण को किस प्रकार से ब्रज से मथुरा में ले जाना चाहते हैं, और उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कैसे सुंदर सुंदर विचार हैं। ये कोई भी जी कोई उत्तम स्थान को छोड़ करके निम्न स्थान में नहीं जाना चाहता। जहां पर जिसको अधिक प्रेम या प्यार मिलता है उस स्थान को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। ये स्वाभाविक है। तो कृष्ण को अब संवादित रूप में निश्चित रूप में ब्रज में अधिक प्रेम और सेवाएं मिलती हैं। ब्रज जैसा उनको प्यार कहीं नहीं मिलता, किंतु ऐसे ब्रज को छोड़कर के कम माधुर्य युक्त ऐश्वर्य भूमि में मथुरा में क्यों आए? उस समय में मथुरा वासियों की दृष्टि में ब्रज कैसा है और ब्रजवासियों की दृष्टि से मथुरा कैसा है, ये सब उसमें विचार हैं। हमारे गोस्वामियों ने इन विचारों को बड़ी गंभीरता से लेकर के विचार करके ग्रहण किया है, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की विषय बहुत सुंदर से विचार किए। कृष्ण क्यों मथुरा गए, क्या जाने के लिए गए? तो आप ही नहीं गए, कुछ दिन में जाकर के चले आते तो गए, तो गए आए ही नहीं। अरे कभी कभी आ जाते, क्यों नहीं आए? ऐसा क्या इस माधुर्य भूमि में त्रुटि हो गई जिसको देखने के लिए एक बार भी नहीं आए? किसी पत्र भेज दी, उद्धव को और बलदेव को भेज दिया, खुद नहीं आए, क्यों? इत्यादि विचार किया। और जहां पर यह बतलाया गया कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं एक पग भी जाते, तो देखते हैं कि कृष्ण तो मथुरा में आ गए फिर द्वारका चले गए, ये सब का क्या रहस्य? तो वेद शास्त्र क्या झूठे हैं? इन सिद्धांतों को जानने से भक्ति परिपक्व होती है, इसमें सिद्धांत विचार भी आ जाते हैं। यदि इसमें थोड़ा सा भी अनुराग हो जाए, रुचि हो जाए, तो अत्याहार कैसे छोड़ेंगे, प्रजल्प कैसे छोड़ेंगे? अत्याहार, प्रजल्प, प्रजल्प, प्रयास, नियमाग्रह, ये सब अपने आप हो गया। इन कथा में रुचि होगी किसको? थोड़ी सी लोभमयी श्रद्धा के अनुसार में यदि इसको देखेंगे तब, और वो लोग इन कथाओं का अधिक आदर करेंगे और उनसे सभी कुछ उनकी सर्वाधिक जिन्हों कभी रुचि नहीं आई है उन लोगों के लिए इसमें रुचि होनी स्वाभाविक है, उनमें रुचि होनी चाहिए। तो जिनकी रुचि है वो करीब करीब हजारों लाखों में एक, क्या कोटि स्वपि हम, और हम इसी अधिकार के अधिक। इसलिए इन सब का भी अनुशीलन होना चाहिए, बीच बीच में हरि कथा भी होनी चाहिए कृष्ण के लिए जाकर। तब ये बोलते बोलते हमारा भी हृदय थोड़ा सा निरस्त हो गया, इसलिए कल से हम भी अंततः चार पांच दिन बीच बीच में वो भी करते रहेंगे, हरि कथा लीला कथा प्रातः सत क्या सत्सुरम वो है, ये श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध, श्रीमद्भागवत हरि कथाओं से एकदम परिप्लुत है, उनका भक्त लोग रसास्वादन करते और सही रूप में कृष्ण को प्राप्त करते। तो कल से हम थोड़ा सा ये करेंगे, तो बीच बीच में ये सब हम लोग के लिए उपयोगी है। ये चाबुक है, चाबुक जानते हैं ना, कोड़ा हम साधकों के, सहजिया लोग बड़े डरते हैं इसे, किंतु साधक लोग नहीं डरते। तो आप लोग इन सब चीजों को ख्याल रखते हुए ऐसा ही जीवन चरित्र करते हुए भगवान का शुद्ध रूप में भजन करें। गौर प्रमाणं देहि।